हरे कृष्णा। तो आज आप लोग जानते हैं आज बहुत विशेष दिन है, आज श्रीवास पंडित का आविर्भाव दिवस है। तो हम लोग जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं माला पर, तो वे लोग प्रत्येक माला के पहले एक बार पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। तो इन पांच नामों में जो पांचवा नाम है वो श्रीवास पंडित है, है ना श्रीवास। तो रोज कम से कम 16 बार हम श्रीवास पंडित का नाम लेते हैं, अगर 16 माला जप करते हैं, है ना, तो कम से कम 16 बार तो लेते ही हैं, उससे ज़्यादा भी लेते हैं लेकिन कम से कम 16 बार तो लेते ही हैं। तो आज उनके विषय में हम सुनेंगे। तो चैतन्य भागवत में अनेक स्थानों पर उनकी लीला है, तो अब कहीं पर मैं संक्षेप में कहीं पर विस्तार से मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये घटना है उस समय की जिस समय चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित कहलाते हैं। निमाई पंडित, चैतन्य महाप्रभु उनका नाम नहीं है, निमाई पंडित हैं, या कभी विश्वंभर कहा जाता है उनको, और भक्त भी नहीं है। भगवान जो अभी भक्त नहीं बने हैं। तो क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ाते हैं, सूत्रों की व्याख्या करते हैं, विद्या का रस प्राप्त कर रहे हैं। और उनके बहुत से छात्र भी हैं साथ में, तो बहुत से छात्रों को साथ में लेकर के बड़ी मस्ती से नवद्वीप के सड़कों पर चला करते हैं, चलते हैं, है ना। और किसी की हिम्मत नहीं है इनसे शास्त्रार्थ करें, है ना, कोई भी शास्त्रार्थ करे उसके बाद का खंडन करेंगे, है ना, हर प्रकार से, है ना। तो एक दिन महाप्रभु राजपथ पर आ गए, चारों ओर इनके साथ 5-7 छात्र चल रहे थे, आपने साधारण वस्त्र पहने हुए थे, एक अंगोछा पीत पट की भांति आपने धारण कर रखा था, अधरों में तांबूल और कोटि चंद्र के समान आपका श्रीमुख। देखकर लोग कहने लगे ये मूर्तिमान कामदेव हैं क्या, साक्षात कामदेव ऐसे लग रहे हैं। मस्तक पर आपने ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए हैं, हम लोग लगाते हैं ना यही तिलक, ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण किया हुआ है, हाथ में पुस्तक है, और नेत्रों से एक बार देखते ही सबका ताप धारण कर लेते हैं। ताप कौन से ताप हैं, त्रिताप, आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, तीनों ताप धारण कर लेते हैं देख करके। स्वाभाविक रूप से छात्रों के साथ चंचलता करते हैं, दोनों भुजाओं को हिलाते डुलाते चल रहे हैं, कैसे दोनों भुजाओं को हिलाते डुलाते चल रहे हैं। अधरे तांबूल कोटि चंद्र श्री बदन, लोग बोले मूर्ति बंद एक ही मदन, लालाटे तिलक के ऊर्ध्व पुस्तक श्री करे, दृष्टि मात्र पद्म नेत्र सर्व ताप हरि, स्वभाव चंचुल पढ़ो यार वर्ग संगे, बाहु दोलाई या प्रभु आए से न रंगे। देवयोग से प्रभु ने श्रीवास पंडित को रास्ते में आते देखा। तो भगवान यद्यपि बहुत चंचल हैं और सबको लज्जित करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, पराजित करते हैं, लेकिन उनमें जो है धर्म की पराकाष्ठा भी है, धर्म की स्थापना भी करते हैं। और धर्म क्या है, अपने से जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनका सम्मान करना, है ना, उनको नहीं परास्त करते। तो श्रीवास पंडित तो बहुत बड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु से पिता के समान हैं, है ना। तो श्रीवास पंडित को रास्ते में आते देखा, श्रीवास ने देखते ही हंसने लगे, उन्हें देखकर प्रभु ने नमस्कार किया, तो प्रभु नहीं हंसे, श्रीवास हंसने लगे, ये नहीं हंसे, गंभीरता से इन्होंने नमस्कार किया। उदास श्रीवास पंडित ने कहा चिरंजीव रहो, श्रीवास ने हंसकर कहा कहो तो उद्धत शिरोमणि कहाँ जा रहे हैं। उद्धत, उद्धत का मतलब उद्दंड, कुछ इसी तरह के हैं ना, कि कोई चिंता ही नहीं है, अपना जीवन बेकार कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो उद्धत शिरोमणि कहाँ जा रहे हैं, श्रीवास पंडित कह रहे कृष्ण भजन ना करके समय को किन कामों में बिगाड़ रहे हो, नष्ट कर रहे हो। अब भगवान अपने को ना जनाए तो कौन जान सकता है, और डांट रहे हैं हाँ कि कृष्ण का भजन नहीं करते हो और समय को जो है बर्बाद करते हो, भगवान को डांट रहे हो, भगवान डांट सुनते हैं, डांट खाते हैं, हैं? रात दिन निरंतर जाने क्या पढ़ते पढ़ाते हो। देखो लोग क्यों पढ़ते हैं, केवल कृष्ण भक्ति को जानने के लिए। यदि वो कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो विद्या का क्या फल है। देखो रास्ते में डांटा भगवान को, और किनके सामने डांटा, उनके ही शिष्यों के सामने डांटा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान लज्जित हो रहे हैं, हाँ कि मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है शिष्यों के सामने, मुझे लज्जित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भगवान में, है ना। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है, हाँ? कि आपसे आपसे बहुत से जूनियर भक्त हैं मान लीजिए, और वो आपका बड़ा सम्मान कर रहे हैं, और कोई सीनियर आप को डांटे, हाँ, उन जूनियरों के सामने, है ना, तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन समझना इस बात को, हाँ, तो भगवान जो है कह रहे हैं, इसलिए समय को सर्वथा व्यर्थ ना गवाओ, आप पढ़ लिए और पढ़ा लिए, अब शीघ्र कृष्ण भजन में लग जाओ। डांट रहे हैं, पढ़ भी लिया पढ़ा भी लिया, हाँ, अब क्या करो, कृष्ण का भजन करो। भगवान को बोल रहे हैं। हसिया श्रीवास बोले कहा देखे सोनी, कहते चलिया छे उद्धते रचूड़ा मणि, कृष्ण न भजिए काल की कार्य घुमाओ, रात्रि दिन ने रवधि के ने व पढ़ाओ, पढ़े लोग के ने कृष्ण भक्ति जानी वारे, से जदि न हिल तबे विद्या ये की करे, ये ते के सर्वदा व्यर्थ न गुआओ काल, पढ़ी लता एवे कृष्ण भज है सकाल। तो महाप्रभु ने हंसकर कहा, हंसकर के उत्तर दिया, सुनो पंडित जी, आपकी कृपा से निश्चित कृष्ण भजन होगा। भगवान कह रहे आपकी कृपा से निश्चित कृष्ण भजन होगा। इतना कहकर महाप्रभु आगे चलते हैं, है ना, उनको लज्जित नहीं करते हैं। बड़े हैं, सीनियर हैं, हैं वो डांटे भी तो उनको, उनकी डांट को स्वीकार कर लें और उनकी कृपा मान लें, है ना। ये जो है मतलब बहुत बड़ी शिक्षा है। हसी बोले महाप्रभु सुना पंडित, तुम्हारे कृपा से हो है वे निश्चित। अब दूसरी घटना है कि भगवान गया की यात्रा करते हैं, अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया की यात्रा करते हैं, और गया में जब ईश्वरपुरी से मिलन होता है और गोपाल मंत्र प्राप्त करते हैं दीक्षा में, तो उस समय उनको कृष्ण प्रेम जो है एकदम मतलब स्फुरित होता है। और अब गया की यात्रा से जब आए हैं नवद्वीप में, तो अब चंचलता सब समाप्त हो गई, और कृष्ण कृष्ण कह करके रोते हैं, कृष्ण कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हैं, हैं, और ऐसे रोते हैं कि आंसुओं की जैसे नदी बह रही हो। और माता शची बहुत चिंतित हैं, माता शची बहुत चिंतित हैं, हैं कि मेरे पुत्र को क्या हो गया, क्योंकि ऐसा कृष्ण प्रेम तो न कभी देखा न कभी सुना है, तो बहुत चिंतित हो गई। तो उस समय जितने लोग हैं उतनी तरह की बातें बोलते हैं, कोई कहता है इनको वायु का रोग हो गया है, दिमाग में वायु चढ़ गई है, कोई कहता है कि कुछ पागलपन आ गया है, कोई कहता है बांध करके रखो, है ना, कोई सही बात नहीं बताता कि सही मतलब बात क्या है, कि कृष्ण प्रेम जो बहुत ही दुर्लभ है वो इनको प्राप्त हुआ है, है ना। तो बहुत, और सची माता जो है कोई जो कुछ बताए उसी बात को मान लेती हैं, तो बड़ी चिंतित हैं। लेकिन फिर सची माता ने श्रीवास पंडित को जब बुलाया घर में, तो एक श्रीवास पंडित ही थे जिन्होंने मतलब सही बात बताई, और बहुत प्रसन्नतापूर्वक सची माता को जो है आश्वासन दिया, कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये पापी और पागल लोग जो है कुछ भी कहें, लेकिन आप जो है आप चिंता मत करो, ये तो ऐसा कृष्ण प्रेम है जो ब्रह्मा और शिव को भी नहीं प्राप्त हुआ है, है ना। अब तो जो है आपको किसी से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल देखो कृष्ण के आश्चर्यों को देखो, अब ये जो है तुम्हारे बहुत बड़े सौभाग्य हैं कि इनको जो है ऐसा कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के मुख से ये बात सुनी जो कि पहली बार किसी व्यक्ति ने बताई, हाँ, तो भगवान क्या बोले कि पंडित अगर आप भी ऐसे ही बोल देते मेरे बारे में कि मुझे बांध करके रखो और ये पागलपन है, तो मैं गंगा जी में कूद करके प्राण त्याग देता, आपने मेरे प्राणों की रक्षा कर ली। हाँ, तो और उसके बाद फिर जो है श्रीवास पंडित की जो है इतनी उदारता के कारण चैतन्य महाप्रभु ने रोज रात को उनके घर में कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो ये जो है कीर्तन श्रीवास पंडित के घर में रोज रात में जो कीर्तन होता था, इसका एक कारण ये कि श्रीवास पंडित ने इनके प्रेम को पहचाना। और श्रीवास पंडित के घर में जब रोज रात में कीर्तन होता था तो रात भर भक्त लोग कीर्तन करते थे। कितने भाग्यशाली वे भक्त थे, रात भर भगवान के साथ कीर्तन और नृत्य करते थे, है ना। और दिन में भी कोई बाधा नहीं पड़ती थी, आप रात भर कीर्तन करें जागें तो दिन में फिर क्या हाल होगा, बड़ा बुरा हाल होगा। लेकिन भगवान के साथ कीर्तन करते थे, जागते थे, लेकिन दिन में कोई बाधा नहीं पड़ती थी, दिन में दिन का काम करते थे, है ना, कोई विश्राम नहीं होता था, लेकिन कोई बाधा नहीं पड़ती थी, है ना। तो इस तरह से लगातार कीर्तन हो रहा था उनके घर में। इसके बाद फिर एक घटना और है कि श्रीवास पंडित के घर में जब कीर्तन होने लगा तो जो पाखंडी लोग थे, ईर्ष्यालु लोग थे, वो तरह तरह की उल्टी उल्टी बातें करते हैं और निंदा करते हैं कि रात भर कीर्तन करते हैं और हम सो नहीं पाते हैं, और मुसलमानों का जो है शासन चल रहा है तो वे लोग जो है हमारी इस नवद्वीप में आक्रमण कर देंगे, उजाड़ देंगे, बहुत कुछ बोल रहे थे। और फिर ये भी उन्होंने झूठी अफवाह फैला दी कि राजा की सेना आ रही है, मुसलमान राजा की सेना आ रही है और श्रीवास को ले जाएंगे नौका में बैठा करके राजा के पास, क्योंकि कीर्तन बहुत ज़ोर ज़ोर से करते हैं ये लोग। तो सर झूठ मूठ की खबर फैला दी तो भगवान ने अब विचार किया कि अब तो मुझे भक्तों का भय दूर करने के लिए अपना ऐश्वर्य दिखाना पड़ेगा। तो उस समय श्रीवास पंडित के घर में भगवान चैतन्य आए और अपना विष्णु रूप प्रकट कर दिया, चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए और सब कुछ बोल रहे हैं कि अब तुम जो है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि राजा की सेना आ रही है यहाँ पर तुम लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन तुम लोग इस बात को समझो कि जब तक मैं राजा के मुंह से ना कहलाऊंगा तब तक क्या राजा बोल सकता है, आज्ञा दे सकता है। मैं तो समस्त प्राणियों का प्रेरक हूँ, और फिर भी अगर मान लीजिए कि राजा ने स्वतंत्र रूप से आज्ञा दे दी तो सब तो मैं तो ये चाहता ही हूँ, तो मैं खुद अकेला जाऊँगा, सबसे पहले राजा के सामने खड़ा होऊंगा, और जब मैं राजा के सामने खड़ा होऊंगा तो क्या वो मेरे सामने सिंहासन पर बैठा रहेगा, क्या मैं उसको जमीन में गिरा नहीं सकता राजा को। और अगर नहीं गिरा जमीन में तो ये तो मैं चाहता ही हूँ, मैं उसको बोलूँगा कि सच और झूठ को तो पहचान, तेरे जितने काजी मुल्ला हैं उनको यहाँ पर बुला, और तेरे जितने हाथी घोड़े और पशु पक्षी हैं इनको बुला, और फिर काजी मुल्ला जो है कुरान की कलमा पढ़ करके इन हाथी घोड़ों को नचाएं या प्रेम से रुलाएं, लेकिन उनके उनके पास तो ये शक्ति नहीं है। फिर मैं बोलूँगा राजा से कि देख राजा तूने इन काजी मुल्लाओं की शक्ति देख ली, अब मैं तुझे अपनी शक्ति दिखाता हूँ, और मैं एक हाथी को पकड़ के लाऊंगा और कृष्ण कृष्ण कह करके रुलाऊंगा, उनके जितने हाथी घोड़े हैं सब नाचेंगे प्रेम से और कृष्ण कृष्ण कहेंगे। तो और उन राजा उस राजा को और उनके जो है जितने भी सैनिक हैं उन सबको भी प्रेम में रुलाऊंगा। तो भगवान इस तरह से कहते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ पर भी तुमको दिखा सकता हूँ, क्योंकि भगवान जो बता रहे हैं तो अभी वो तो बात मतलब सामने तो आई नहीं, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है मैं अभी दिखाता हूँ। अब अगर भक्तों वहाँ तो सब भक्ति लोग हैं, श्रीवास पंडित के घर में सब भक्ति हैं, अगर भक्तों को प्रेम में रुलाएं तो भक्त तो वैसे ही प्रेम में रोते हैं। अब यहाँ पर हाथी घोड़ा तो कोई है नहीं श्रीवास पंडित के घर में, या कोई पशु पक्षी था नहीं, तो चार वर्ष की नारायणी जो श्रीवास पंडित की भतीजी थी उसको उन्होंने देखा भगवान ने, तो उसको बुलाया और कहा कि नारायणी कृष्ण कृष्ण कह करके रो रो। तो और जैसे ही भगवान की आज्ञा हुई तो नारायणी जो है हा कृष्ण कहते कहते एकदम मतलब प्रेम में रोने लगी, और इतनी रोई कि उसके आंसुओं से पूरा आंगन भर गया, सिंहासन भर गया, है ना। तो ये जो है आश्चर्य भगवान ने करके दिखलाया। इसके बाद फिर भगवान जो है श्रीवास पंडित से कहते हैं कि श्रीवास अब तुम बताओ क्या तुमको डर है किसी, जब मैं हूँ तुम्हारे साथ में क्या तुमको डर है। तब श्रीवास पंडित ने जो है भगवान की बड़ी स्तुति की। तो ये जो घटना है ये मैंने संक्षेप में सुना दी, क्योंकि कल भी मैंने सुनाई थी पानीपत में ये कथा, है ना। अब एक घटना है, जब भगवान श्रीवास पंडित के घर में महा ऐश्वर्य प्रकाश करते हैं, जिसे कहते हैं सप्त प्रहरिया प्रकाश। सप्त प्रहरिया प्रकाश का मतलब है सात प्रहर लगातार भगवान ईश्वर भाव में रहे। तो अक्सर भगवान जो है ईश्वर भाव में आते थे, लेकिन बड़ी जल्दी फिर वे भक्ति के भाव में आ जाते थे। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि सात प्रहर का मतलब 21 घंटे लगातार ईश्वर भाव में भगवान बैठे रहे और भक्तों को वरदान देते रहे और भक्तों को एक एक करके बुलाते रहे, उनके पिछले जन्म की बातें बताते थे, पूर्व जीवन की बातें बताते थे, और ये याद दिलाते थे कि तुम्हारे ऊपर कैसा संकट आया जो मैंने तुमको रक्षा की थी संकट से, इस तरह से भगवान बुलाते हैं। तो श्रीवास को भी बुलाया, और श्रीवास अंगन में ही सब घटनाएं घटनी हैं। श्रीवास को बुलाया तो महाप्रभु श्रीवास से बोले, अरे श्रीवास तुझे याद है तूने देवानंद पंडित के स्थान पर श्रीमद् भागवत सुनी थी। देवानंद पंडित नवदीप में रहते थे, लेकिन भागवत तो सुनाते थे, लेकिन भागवत में वो भक्ति का अर्थ नहीं, भक्ति भक्ति की व्याख्या न करना करके शुष्क व्याख्या करते थे श्रीमद् भागवत की। और श्रीवास पंडित गए थे भागवत सुनने के लिए, तो भगवान याद दिलाते हैं कि तूने भागवत सुनी थी, भागवत तो पद पद पर प्रेम रसमयी है, उसे सुनकर तुम्हारा हृदय बहुत ही द्रवित हुआ और तुम ऊंचे स्वर से रोने लगे, तुम ऊंचे स्वर रोने लगे और बेबल होकर भूमि पर गिर पड़े। लेकिन अज्ञानी विद्यार्थीगण भक्ति भाव को क्या समझे, वे कहने लगे ये क्यों इतना रोता पीटता है, कुछ समझ में नहीं आता। जितने विद्यार्थी और जो गुरु थे ये सब वैसे ही हैं, भक्तिहीन है। जो भागवत सुना रहा है जो गुरु, उसके अंदर कोई भक्ति की भावना नहीं है, वो भागवत की व्याख्या कर रहा है, शुष्क व्याख्या कर रहा है, और जो शिष्य लोग हैं वो भी भक्ति रहे थे। और श्रीवास पंडित जो इतने बड़े भक्त थे वो जब सुने तो रो रहे हैं और गिर गए भूमि पर, है ना। तो ये जो शिष्य लोग हैं वो समझ नहीं पाए, वो क्या मान रहे हैं कि तो हमारे कथा में बाधा डाल रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, ये क्यों इतना रोता पीटता है, कुछ समझ में नहीं आता। तुम तो प्रेम की तरंगों में पड़े बाहर से बेसुध थे, विद्यार्थियों ने तुमको घसीटते हुए बाहर द्वार पर कर दिया। क्या सुनाई पड़ा, प्लेन की आवाज से सुनाई नहीं पड़ा, विद्यार्थियों ने तुम्हें घसीटते हुए बाहर द्वार पर कर दिया, कितना अपराध। विद्यार्थियों ने तुम्हें घसीट करके बाहर द्वार पर कर दिया। देखो एक इतना प्रेमी भक्त कथा सुन रहा है, अपना सौभाग्य मानना चाहिए गुरु और शिष्य सबको, गुरु को भी अपना बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए कि एक ऐसा भी प्रेमी भक्त आया है जो भागवत का इतना रस प्राप्त कर रहा है, और शिष्यों को भी अपना बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए, है ना। तो सौभाग्य मानने की तो बात बहुत दूर है, वो तो बाधा मान रहे हैं, है? और क्या किया, घसीट करके बाहर कर दिया श्रीवास पंडित को। इस पर देवानंद ने उनको मना नहीं किया, गुरु जैसा अज्ञानी था वैसे शिष्य भी अज्ञानी थे, उन्होंने तुमको घसीट कर बाहर द्वार पर छोड़ दिया, तब तो वहां से खड़े दुखी होकर घर लौट आए थे। अब श्रीवास पंडित को कैसा लगा होगा, कितना अपमान हुआ, और केवल इस कारण से कि श्रीमद् भागवत का रस वो ले रहे थे, इस कारण से उनका इतना अपमान हुआ। तो भगवान के, और भगवान को समय जन्म भी नहीं हुआ था, चैतन्य महाप्रभु का समय जन्म भी नहीं हुआ था, है ना, लेकिन वो तो भगवान है ना। भगवान कह रहे हैं कि मन में दुख पाकर तुम एकांत में बैठे और श्रीमद् भागवत को उठाकर देखने लगे, अपने घर में आकर के एकांत में श्रीमद् भागवत देखने लगे, तो मन बहुत दुखी हुआ तो श्रीमद् भागवत ही तुमने उठाई देखने लगे। तब मैं तुम्हारा दुख देखकर वैकुंठ से आकर तुम्हारे देह में प्रकट हुआ। मैं वैकुंठ में था उस समय, पृथ्वी पर नहीं था, है ना, जन्म नहीं हुआ था भगवान का, तो वैकुंठ से आया मैं, और समय वैकुंठ से आया और तुम्हारे देह में प्रकट हो गया। तब मैंने तुम्हारे हृदय में बैठकर अपना प्रेम योग देखकर तुम्हें रुलाया, तुम रोए, श्रीमद् भागवत को पढ़ते हुए तुम रोए, तब तुमको भागवत का बड़ा आनंद हुआ और तुम्हारे नेत्रों के जल से वो स्थान सारा भीग गया, मानो वहाँ वर्षा हुई हो। इस अनुभव को प्राप्त होकर श्रीवास आनंद में बेहर होकर भूमि पर लोट पोट हो गए। श्रीवास पंडित को जो है तब याद आया कि उनका कैसे अपमान हुआ था और भगवान ने कैसे उनको जो है साथ दिया, उनका साथ दिया है ना। तो श्रीवास पंडित क्या हो गए, प्रेम में लोटपोट हो गए, लोटपोट हो गए और लंबी लंबी सांसें लेकर के रोने लगे। बाहे नहीं जाने तुम्हें प्रेमे रे दिकारी, पढ़ो या तुम्हारे निले बाहे रे दुयारी, देवानंद एथे नकारी ले निवारण, गुरु यथा अज्ञ से मत से सगन, बाहे रे दुयारे तुम्हा एड़े लेटानिया, तबे तुम्हें आई ला पारा मैं दुखे पाया, दुखे पावे माने तुम्हें बिरले बसिया, आरे बारे भागवत चाही तेला गीला, देखिया तुम्हारे दुख से वैकुंठ हईते, आविर्भाव हई लांग तुम्हारे देहते, तबे आमे तुम्हारे हृदय बसिया, कंदाइलु अपनार प्रेम योग दिया, आनंद हईल देह सोनी भागवत, सब तीर्थ स्थान हईल बारी सारे मत, अनुभव पाई अभिवल श्रीनिवास, गड़ गड़ी जाए कंदे पाए घन श्वास। फिर एक घटना है जिसमें श्रीवास पंडित की सास उनके घर में छिप करके आई कीर्तन देखने के लिए। तो श्रीवास पंडित और उनके जितने साथी थे उनको अंदर आने दिया जाता था, और उसके बाद फिर दरवाजे अंदर से बंद कर लिए जाते थे और किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता था, कोई अभक्त अंदर ना आए। और श्रीवास पंडित की जो सास थी तो वो भी, उसको भी अधिकार नहीं था आने का, तो छिप करके बैठ गई। श्रीवास को भी पता नहीं चला, वो छिप करके बैठी है ना। और भगवान को तो सब कुछ पता है, लेकिन भगवान ऐसी लीला करते हैं, क्या कहते हैं, बार बार रुक जाते हैं, बार बार नृत्य करते करते बार बार रुक जाते हैं और कहते हैं कि अभी उत्तरोत्तर प्रेम नहीं आ रहा है, कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आया है क्या, भगवान ऐसे पूछ रहे हैं, कोई बाहरी व्यक्ति आया है क्या, है ना। और भक्तों को जो है डर लग रहा है कि हमसे कोई अपराध हो गया है शायद, इसलिए भगवान को जो है प्रेम नहीं हो रहा है, तो भक्त लोग अपने को ही अपराधी मान रहे हैं। और श्रीवास पंडित ने एक बार पूरा घर देख लिया, कोई नहीं है, और भगवान फिर नृत्य कर रहे हैं, फिर रुक जाते हैं, कहते नहीं कोई है, कोई है, प्रेम नहीं आ रहा है, प्रेम बढ़ नहीं रहा है, किसी के प्रति प्रेम नहीं बढ़ रहा है। तो दोबारा श्रीवास जब गए तो देखा कि एक जो है टोकरी के नीचे जो है वो छिप करके बैठी थी सास। तो श्रीवास पंडित ने जो है उसको केसों से पकड़ करके उसको कहा चल निकल यहाँ से, उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। और ये बात जो है किसी भक्त को भी पता नहीं चली और महाप्रभु से भी कुछ नहीं बताई, लेकिन महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं, तो आगे चल करके महाप्रभु फिर नृत्य करते हैं और कहते हैं कि हाँ अब प्रेम आ रहा है मुझे, अब मुझे प्रेम आ रहा है। तो ये घटना मैंने कल सुनाई थी वहाँ पर, पानीपत में सुनाई थी। अब एक ब्रह्मचारी की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है, ये मैं दोबारा सुना रहा हूँ, बहुत ही अच्छी कथा है ये। तो सुनिए बड़े ध्यान से। श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। विश्वंभर की जय हो, महादेव के ईश्वर की जय हो, नित्यानंद के प्रिय श्री चैतन्य की जय हो, श्री कृष्ण चैतन्य के भक्तों की जय हो, जय हो। इस प्रकार विश्वंभर प्रभु नवद्वीप में क्रीड़ा कर रहे हैं और उनका दर्शन सर्वसाधारण को नहीं होता। नवद्वीप में दिन प्रतिदिन महा आनंद हो रहा है, कारण कि वैकुंठ नायक विश्वंभर देव अवतार लेकर अपने प्रिय नित्यानंद सहित भक्तों के समाज में अपने नाम का कौतूहल पूर्वक रसास्वादन करते हुए क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रतिदिन रात्रि के समय कीर्तन करते हैं, उसमें भक्तों के अतिरिक्त और कोई नहीं रहने पाता। विश्वंभर देव की शक्ति की इतनी बड़ी महिमा है कि कोई उसका लंघन नहीं कर सकता। अतः कीर्तन से दूर रहकर 10-5 लोग निंदा करते थे, ऐसे लोग तो नरक में ही जाएंगे। कोई कहता कलयुग में कैसा वैष्णव, जितने वैष्णव देखते हो सब अपना पेट पालने वाले हैं, देखो कैसे निंदा करते थे। कोई कहता इनके हाथ पांवों को बांधकर इन्हें जल में फेंक दो, अगर जिंदा रहें तो इनको हम वैष्णव कहेंगे। कोई कहता अरे भाई ये निश्चय जान लो, ये निमाई पंडित गांव को लुटवा देगा। इस प्रकार से सब लोग कीर्तन के दर्शन पाने के लिए भय दिखलाते, पर उनका सौभाग्य कहाँ कि दर्शन पा सकें, बल्कि और उल्टा अपराध कर रहे हैं। कीर्तन का दर्शन करने के लिए तो कुछ दूसरी विधि है, कि और समर्पित हो, और निंदा करते तो और ज्यादा दूरी बढ़ेगी और अपराध बढ़ेगा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गुण निधि, जय विश्वंभर जय भवाधीर विधि, जय जय नित्यानंद प्रिय द्विज राज, जय जय चैतन्य रे भगत समाज। हे नमत नवद्वीप प्रभु विश्वंभर, क्रीड़ा कर नहि सर्व नयन गोचर। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐसा कहते थे कि श्री सची नंदन प्रभु संकीर्तन करते हैं और संकीर्तन के द्वारा जगत को पवित्र करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे। अब जिनको आने नहीं दिया जाता था, दो प्रकार के लोग थे। एक प्रकार के लोग थे जो निंदा करते थे, अपना दोष ना मान करके भगवान में और भक्तों की निंदा करते थे, है ना। और दूसरे प्रकार के लोग थे जो अपने अपने ही दोष को मानते थे कि हम योग्य नहीं है, है ना। दो प्रकार के लोग हैं। तो वे क्या कहते हैं, लोग इस संकीर्तन को देख नहीं पाते, इससे उन्हें बड़ा शोक होता है, अपने को अभागा कहकर लंबी सांसें छोड़ते हैं। तो अपने भाग्य की निंदा करते हैं, भगवान के और भक्तों की निंदा नहीं करते, है ना। तो ये जो है मतलब विधि है ना, भगवान को प्रसन्न करने की। कोई तो छिपकर संकीर्तन को देखने के लिए किसी से प्रार्थना करते हैं, किसी भक्त से, है कि मुझे छिप करके किसी प्रकार से ले जाओ, मुझे भी दिखा दो एक बार। परंतु प्रभु के सब भक्त ये जानते थे कि प्रभु सर्वज्ञ हैं, इस भय के कारण कोई किसी को संकीर्तन के स्थान पर नहीं ले जाता था। उस नवद्वीप में एक ब्रह्मचारी रहता था। अब सुनिए बड़े ध्यान से। वो बड़ा तपस्वी साधु था, निर्दोष जीवन बिताता था, सदा दूध ही पीता था, अन्न नहीं खाता था। कितनी तपस्या, एक ब्रह्मचारी, दूध पीता था, अन्न नहीं खाता था, प्रभु का कीर्तन देखना और सुनना चाहता था, परंतु प्रभु तो द्वार बंद करके ही कीर्तन किया करते थे। वहां कोई ऐसा वीडियो कैमरा भी नहीं था। तो भक्तों के बिना कोई प्रवेश नहीं कर पाता था। वो ब्राह्मण संकीर्तन दर्शन कर पाने के लिए रोज श्रीवास के निकट प्रार्थना करता रहता। वो कहा करता कि यदि तुम एक दिन कृपा करके मुझे अपने घर के भीतर ले चलो, तो कहीं मैं निमाई पंडित का वो नृत्य देख सकूं, अपने नेत्रों को सफल करूं और कृतकृत्य हो जाऊं। बेचारा जो है इतना गिड़गिड़ा रहा है, रोज श्रीवास पंडित के पास आता है। इस प्रकार वो ब्राह्मण नित्य प्रति श्रीवास को मनाया करता। अंत में एक दिन श्रीवास ने यह वचन कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम तो सदा से ही बड़े सज्जन हो, ब्रह्मचर्य सहित फलाहार करते हुए तुमने अपनी आयु बिताई है। दूध या फल, अन्न नहीं खाते। अतः मैं जानता हूं तुम्हारे शरीर में कोई पाप नहीं है और संकीर्तन देखने का तुमको अधिकार है, पर वहां जाने के लिए किसी को प्रभु की आज्ञा नहीं है, अतः छिप करके रहना होगा। श्रीवास पंडित कह रहे हैं, अतः छिप करके रहना होगा, ये मैं तुमसे कह देता हूं। इतना कहकर वे ब्राह्मण को लेकर घर आए। वो जाकर एक ओट में छिप कर बैठ गया। उधर 14 भवन के पति प्रभु नृत्य कर रहे थे, साथ में चारों ओर महा भाग्यशाली भक्त थे, सब बड़े कौतूहल पूर्वक गा रहे थे कृष्ण राम मुरारी बनमाली। नित्यानंद गदाधर को पकड़े हुए घूम रहे थे। अद्वैताचार्य चारों ओर आनंद में भाग रहे थे, परम आनंद सुख में तल्लीन, किसी को बाहर की सुध नहीं थी। नित्य करे चतुर्दश भुवने रे नाथ, चतुर्दे के महाभाग्यवंत वर्गे साथ। कृष्ण राम मुकुंद मुरारी बने माली, सभी गायंत महाकुतूहली। नित्यानंद गदाधर धरी अभिनाय, आनंद अद्वैत सिंह चारी दिगे धाय। परानंद सुख के हो बाहे नाही जाने, वैकुंठ नायक नृत्य करे अपने। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई, इस धुन को छोड़ और कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। विश्वंभर देव के अश्रु कंपन रोम हर्ष गंभीर हुंकार, इन परिवर्तनों को कौन वर्णन कर सकता है। विश्वंभर राय सर्वज्ञ सर्वमणि है, जान गए कि यहाँ एक विप्र छिप कर बैठा है। भगवान जान गए, लेकिन फिर भी मनुष्य लीला करते हैं ना, तो बताते नहीं कि मैं जानता हूँ, ये भगवान ही नहीं कहते। क्या कहते हैं, अतः रुक रुक कर विश्वंभर प्रभु कहते, आज कीर्तन में उत्तर उत्तर अधिक प्रेम क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। लगातार प्रेम बढ़ता जाता, लेकिन लगातार प्रेम बढ़ क्यों नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या कोई बाहर का आदमी घर के भीतर आया है, सच तो बताओ मुझे। सर्वज्ञ रे चूड़ामणि विश्वंभर राय, जाने विप्र लोकैया आचय ये थाय। रहिया रहिया बोले प्रभु विश्वंभर, आज के ने प्रेम योग्य ना पांग निर्भर। केहो नहीं आसिया आछे बाड़ी रे भीतरे, किछु नहीं बूंजो सत्य का देखी मोरे। श्रीवास डर कर कहने लगे, और तो किसी को पता नहीं। श्रीवास डर कर कहने लगे, प्रभु यहाँ कोई निंदक विमुख तो नहीं आया है, केवल एक ब्रह्मचारी जो बड़ा सज्जन ब्राह्मण है, सदा दूध ही पीता है, जीवन उसका निष्पाप है, आपके दर्शन के लिए उसमें बड़ी श्रद्धा है, वो तो एकांत में अवश्य बैठा हुआ है प्रभु। उसके वकील, जैसे वकील होते हैं ना वकालत करे, तो उसके पक्ष में बोल रहे हैं, है ना। सुनते ही क्रोध में भरकर विश्वंभर प्रभु बोले, तुरंत निकाल बाहर करो घर से उसे, मेरा नृत्य देखने की उसमें शक्ति ही क्या है, दूध पीने से ही क्या मुझमें भक्ति हो जाती है। फिर दोनों भुजाओं के ऊपर उठाकर अंगुली से अपने को दिखलाते हुए बोले, दूध पीने से कोई मुझे नहीं पाता, किंतु यदि चंडाल भी मेरी शरण ले तो वो भी मेरा है और मैं उसका हूँ, ये निश्चय जान लो। यदि सन्यासी भी मेरी शरण नहीं लेता है तो वो भी मेरा नहीं है, ये मैंने सत्य कहा है। भला गजेंद्र ने कौन सा तप किया था, गजेंद्र मतलब हाथी जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ा। बानरों ने कौन सी तपस्या की थी, कौन से बानर, राम की सेना के। और गोपों ने कौन सा तप किया था, ब्रज के गोपों ने, बताओ तो सही, उन्होंने किस तप के बल से मुझे पाया। असुर भी तो तप करता है, पर उसका फल क्या होता है, बिना मेरे शरण लिए उद्धार नहीं है। प्रभु फिर बोले, दूध पीने से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं सबका गर्भ चूर्ण कर दूंगा, यहीं देख लो, यहीं देख लोगे। अत्यंत भयभीत होकर वो ब्रह्मचारी निकल कर बाहर हुआ। वो महाधीर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, अब देखो ये है धैर्य और ये है बहुत बड़ी शिक्षा, कि कोई अन्याय आपको लगता है कि आपके साथ हो रहा है तो भी आपको क्या सोचना है, अपना ही दोष देखना है, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो वो जो है मतलब दूसरे प्रकार से भी सोच सकता था, है कि देखो कितना घमंड है, ये है वो है, क्या सोचता, लेकिन ये नहीं सोचा। क्या सोचा, कि मेरा इतना सौभाग्य था कि मैं कुछ देख तो पाया, मेरा इतना सौभाग्य था कि मैं कुछ देख तो पाया, और जैसा अपराध किया वैसा दंड भी मिल गया, तो भगवान में दोष नहीं देखा। भगवान में दोष दिखाई देता है, लेकिन फिर भी नहीं, जैसा अपराध किया वैसा दंड भी मिल गया। ओह अद्भुत नृत्य अद्भुत कीर्तन देखा, अपराध जैसा वैसी निंदा भी मिली। तो ग्रंथकार कहते हैं, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ना, कि सेवक की ऐसी बुद्धि होती है, सेवक की कैसी बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि होती है, सेवक प्रभु के दिए हुए सब दंडों को सह लेता है, ऐसा मन में सोचता हुआ वो ब्राह्मण चल रहा था कि अंतर्यामी श्री गौर सुंदर जान गए। हरि बोल। जान गए और करुणा सागर प्रभु ने पुनः उसको बुलवाकर अपना चरण कमल उसके मस्तक पर अर्पण कर दिया। हरि बोल हरि बोल। इसमें धैर्य की आवश्यकता है ना। भाव तो उसका पहले से ही अच्छा था है, फिर भी भगवान परीक्षण लेते हैं है? प्रभु बोले मैं तप करता हूं, इसका बल मत रखो, बस इतना निश्चय जान लो कि विष्णु भक्ति ही श्रेष्ठ है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर समस्त भक्तों ने हरि ध्वनि करके आनंद प्रकट किया। वो ब्रह्मचारी भी तत्काल भूमि पर दंडवत पड़कर प्रणाम करने लगा। जो जन इस रहस्य को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, सुन रहे हैं, सुनिए सब लोग, अगर सुना है तो सुनो, जो जन इस रहस्य को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे उन्हें गौरचंद्र प्रभु अवश्य ही मिलेंगे। ब्रह्मचारी पर कृपा करके प्रभु आनंद के आवेश में प्रचुर नृत्य करने लगे। उस ब्राह्मण के चरण में मेरा नमस्कार है, उस ब्राह्मण के चरण में मेरा नमस्कार है कि जिसकी श्री चैतन्य देव के दंड के प्रति ऐसी बुद्धि हुई और निंदा द्वेष नहीं हुआ मन में है? मन के भाव को भी भगवान समझ गए और बुला लिया, अंदर बुला लिया। महाभय ब्रह्मचारी हैला बाहिर मन मन चिंतय ब्राह्मण महाधीर, ए मोर भाग्य बड़े जे किछु देखिलु अपराध अनुरूप शास्ति उपायिलु, अद्भुत देखिलु नृत्य अद्भुत क्रंदन अपराध अनुरूप पाइलु तर्जन, सेवक हाइले ए मत बुद्धि है सेवक से प्रभु रे सकल दंड सही, ए मत चिंतिया चालिते विप्रवर जानी लेने अंतर्यामी श्री गौरे सुंदर, डाकिया आनिया पुनः करुणा सागर पाद पद्म दिलातार मस्तक ऊपर, प्रभु बोले तप करी ना करी है बल विष्णु भक्ति सर्वश्रेष्ठ जाने है केवल, हरि बाले संतोष सकल भक्तगण दंडवत हैया पड़ी लतछन, श्रद्धा करे जय जन सुनाए ए रहस्य गौर चंद्र प्रभु तारे मिले वे अवश्य। तो ये सब जो घटना है ये श्रीवास अंगन की घटना है। इस प्रकार प्रभु रोज रात में कीर्तन करते परंतु उसे देखने की शक्ति भक्तों को छोड़कर औरों को नहीं थी। नदियावासी सब मन में बड़े दुखी थे, बड़े दुखी थे और निंदकों की निंदा करते थे। ये होना चाहिए, जो निंदा करने वाले उनकी निंदा करें तो वो भगवान का गुणगान हो गया है कि नहीं। निंदकों की निंदा करते थे ये पापी निंदक, बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण ऐसे महोत्सव के दर्शन को ना जाकर मात्र निंदा करना ही जानते हैं और ऐसे संकीर्तन से वंचित रह जाते हैं। कदाचित इन पापी निंदकों के कारण ही निमाई पंडित भले लोगों को भी भीतर नहीं आने देते, परंतु वे तो श्री कृष्ण के भक्त हैं, सब जानते हैं, उस पर उनका हृदय भी परम निर्मल है। यदि हम सबों को उन पर भक्ति बनी रहेगी तो हम उनका नृत्य किसी न किसी प्रकार अवश्य देख पाएंगे। ये है ना, ये आशा हाँ कि नहीं, उनका तो जो है हृदय बहुत कोमल है, उनमें बहुत दया है, एक दिन तो हमें जरूर हैं दिखाएंगे अपना। एक नगरवासी बोला बैठे रहो भाई यहीं देख लेना, नेत्र भरकर निमाई पंडित संसार के उद्धार के लिए नदियों में आकर प्रकट हुए हैं, वे नगर नगर में घर घर में द्वार द्वार में संकीर्तन करेंगे, ये मैं तुमसे कह ही देता हूँ। अभी तो हमें नहीं देखने को मिलता है लेकिन होगा, ऐसा दिन आएगा ना। नगरवासी जन सभी अवतारों में भाग्यवान थे, ये तो पंडितों का दल था जो निंदा करके मरता था। दिन निकल आने पर सब नगरवासी प्रभु के दर्शन के लिए आते थे। अब उनको पता था कि द्वार खुलेगा, जब सवेरा होगा द्वार खुलेगा और निमाई पंडित निकलेंगे बाहर, तो दर्शन के लिए पहले से वहां पर तैयार रहते थे। कोई नवीन वस्तु भेंट लेकर, कोई हाथ में केला लेकर, कोई घी कोई दही कोई सुंदर माला लेकर प्रभु के दर्शन के लिए आते थे। दर्शन करने पर सब लोग दंडवत प्रणाम करते थे। लैया चले न सभी प्रभु देखी वारे, प्रभु देखी सर्वजन दंडवत करे। तो प्रभु कहते तुम सबको कृष्ण भक्ति मिले, तुम सब श्री कृष्ण के गुण और नाम के अलावा और कुछ ना बोला करो। प्रभु सबको उपदेश करते कि ध्यान पूर्वक कृष्ण नाम महामंत्र सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र मैंने कहा है, इसे सब निश्चित संख्या में नियम पूर्वक जपा करो, इससे ही सबको सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसे सब समय कीर्तन किया करो, इसके लिए देश काल पात्र की कोई विधि नहीं है। बस अपने घर के द्वार पर 10-5 जने मिलकर हाथ से ताली देते हुए सब कीर्तन किया करो। प्रभु बोले कृष्ण भक्ति हो कैसा भार है, कृष्ण गुण नाम है वैना वली है आरे। आपन ऐसा भारे प्रभु करे उपदेश, कृष्ण नाम महामंत्र सुना विशेष। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले कई लांग ए महामंत्र, यह किया जप सब करिया निर्बंध। यह है ते सर्व सिद्धि है ए वैसा भारे, सर्व क्षण बोले इथे विधि नाही आरे। इसके बाद फिर एक लीला है कि भगवान श्रीवास के घर में कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और श्रीवास के पुत्र की मृत्यु हो गई है ना। और जब पुत्र की मृत्यु हो गई तो घर के अंदर स्त्रियां वहाँ क्रंदन की ध्वनि कर रही हैं, रो रही हैं। और श्रीवास को जब पता चला कि रोने की ध्वनि यहाँ आ रही है और भगवान के नृत्य में बाधा पड़ेगी है, तो वो घर के अंदर गए और उन सबको समझाया कि जहाँ भगवान साक्षात नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जिस पुत्र का देहांत हुआ है उसके लिए क्या शोक करने की आवश्यकता है। ऐसा सौभाग्य तो मैं चाहता हूँ कि मुझे प्राप्त हो, ये शोक करने की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। फिर भी अगर तुम लोग रोना चाहती हो तो धीरे धीरे रो कि भगवान के कीर्तन में बाधा ना पड़े। अगर भगवान के कीर्तन में बाधा पड़ी तुम्हारे रोने के कारण, तो मैं अभी गंगा जी में जा करके अपना देह त्याग दूंगा। तो श्रीवास पंडित की बात सुनकर के और डर गई वो कि एक तो पुत्र की मृत्यु हो गई, अभी ये भी जो है मतलब कूद जाएंगे गंगा जी में। तो फिर धीरे धीरे रोने लगी है ना। और श्रीवास पंडित जो है कीर्तन में बहुत प्रेम से नृत्य कर रहे हैं भगवान के कीर्तन में है ना। लेकिन धीरे धीरे ये बात जो है सब भक्तों को पता चली और शोक का वातावरण बन गया। तो 7.5 घंटा हो गया था और भगवान जो है तब कीर्तन बंद किया। और भगवान कहते मेरा चित्त जानने कैसा हो रहा है, श्रीवास के घर में क्या कोई दुखद घटना हुई है, है? तो भक्तों ने बताया कि इनके जो है पुत्र का देहांत हो गया है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं बताया आपने। तो श्रीवास कहते हैं कि जिसके घर में आप प्रसन्न हैं होकर नृत्य करें हैं, तो ऐसे मेरा तो इतना सौभाग्य है, मुझे क्या दुख कि मैं आपको बताता ये बात। तो भगवान जो है बहुत इस बात से मतलब उनके इस बात से भगवान इतने दब गए कि भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों का संग मैं कैसे छोड़ूंगा, कि मेरे लिए जो है अपना सब दुख शोक उन्होंने भुला दिया है? फिर भगवान ने उस बच्चे को जो है जीवित कर दिया और उससे पूछा कि तुम श्रीवास पंडित के घर को छोड़ करके क्यों जा रहे हो। तो वो जो बालक था उसने कहा कि आपके विधान के अनुसार मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि आपके विधान को पलटने की शक्ति किसी में नहीं है। और जितने दिन मुझे पंडित के घर में रहने का सुयोग था उतने दिन मैंने रह लिया, लेकिन अब तो मैं ऐसे स्थान में जा रहा हूँ जहाँ जन्म मरण का कोई कष्ट ही नहीं है ना। और भगवान पूछते हैं कि तुम वहाँ रहना चाहते हो या यहाँ रहना चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं वहीं पर जा रहा हूँ और आप मुझे आज्ञा दीजिए और मेरा अपराध मत लीजिए। तो इस तरह से जब उस बच्चे ने बात की मतलब उसने क्या बताया कि मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ, तो सब का जो है शोक दूर हो गया, मोह दूर हो गया और सब श्रीवास पंडित और चारों भाई भगवान के चरण कमलों में गिर गए और जो है विनम्र प्रार्थना रो रो करके प्रार्थना करने लगे कि अब हमको जन्म जन्म जो है अपने चरणों की भक्ति दीजिए और आपके चरणों की भक्ति में ही हम लोग हमेशा रहें। तो ये जो है बड़ी सुंदर लीला है, ये मैं संक्षेप में मैंने बता दी। अच्छा आप सुनिए एक लीला है। समस्त जीवों के गुरु श्री गौर सुंदर की जय हो और समस्त भक्तों के वांछा कल्प तरु की जय हो, सन्यासी मणि श्री वैकुंठनाथ की जय हो। अभी भगवान जो है सन्यास ले चुके हैं और सन्यास लेने के बाद श्रीवास के घर में आए हैं। अब श्रीवास के घर वहाँ नहीं है जहाँ था नवद्वीप में नहीं था, क्योंकि भगवान संन्यास लेके चले गए तो भगवान की याद आती थी श्रीवास पंडित को उस घर में, क्योंकि भगवान रात भर कीर्तन करते रहे, अब कैसे, बड़ा मुश्किल था उस घर में रहना, इसलिए वो उस स्थान को छोड़ दिया और कुमारहट्ट में एक मकान लिया, वहाँ पर रहते श्रीवास पंडित। अब यहाँ पर भगवान भी आए सन्यासी के रूप में श्रीवास के घर में, तो सन्यासी मणि श्री वैकुंठ नाथ की जय हो। हे प्रभु, जीवों के प्रति शुभ दृष्टि डालो। भक्त गोष्ठी सहित श्री गौरांग प्रभु की जय हो। दयामय करुणा सागर की जय हो। हे भाई, जिस प्रकार श्री गौर सुंदर ने विहार किया उस शेष खंड की कथा एकाग्र मन से सुनो। श्री प्रभु कुछ दिन अद्वैताचार्य के घर रहकर कुमारहट्ट में श्री व्यास जी के घर में आए। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व गुरु, जय जय भक्त जन वांछ कल्प तरुण, जय जय न्यासीमानि श्री वैकुंठ नाथ, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टि पाते। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, जय जय श्री करुणा सिंधु दयामय। शेष खंड कथा भाई सुन एक माने, श्री गौर सुंदर बिहारी लेन जी मने। श्रीवास के घर में आए, श्रीवास श्री कृष्ण के ध्यान आनंद में बैठे थे, अकस्मात ध्यान का फल सामने प्रकट हुआ। श्रीवास अपने प्राणनाथ को देखते ही दंडवत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्रीवास पंडित महाप्रभु के चरणों को छाती में रखकर लंबी सांस लेते हुए ऊंचे स्वर से बहुत रोए और श्री गौरांग सुंदर ने श्रीवास को अपनी गोद में लेकर अपने नेत्रों के जल से उनके शरीर को भिगो दिया। श्रीवास की गोष्ठी के सब साथी श्री चैतन्य प्रभु की कृपा पाकर उन्हें देखकर भुजा उठाकर रोने लगे। श्रीवास पंडित को अपने घर में वैकुंठ नायक को पाकर कितना अपूर्व उल्लास हुआ उसे वे जान ही ना पाए। स्वयं मस्तक पर लाकर उत्तम आसन दिया, उस पर श्री गौरांग विराजमान हुए। चारों ओर पार्षदगण बैठ गए, सभी निरंतर कृष्ण नाम का गान करने लगे। पतिव्रता स्त्रियां घर में जय जयकार कर रही थीं। श्रीवास का भवन प्रेमानंद स्वरूप हो रहा था। तो पहली बार आए भगवान नए घर में श्रीवास के। अपने माथाए करी उत्तम आसन, दिले ने बसिला तथि कमल लोचन, चतुर्दगे बसिलेन पारिषद गण, सभी गायन कृष्ण नाम अनुचन। गृह जय कार्य करे पतिव्रता गण, आनंद स्वरूप है श्रीवास भवन। प्रभु आई लेन मात्र पंडित रह घर, वाद पाई आई लेन आचार्य पुरंदर। श्रीवास के घर श्री गौरचंद्र आए हैं, ये बात सुनते ही श्री पुरंदर आचार्य वहां शीघ्रता से आए। श्री प्रभु उनको देखते ही पिता कहकर बोले और प्रभु ने बड़े प्रेम से उनके जेठ भर ली। पुरंदर आचार्य बड़े पुण्यशाली थे, प्रभु को देखकर अपने आप को संभाल ना सके। उसी समय वासुदेव दत्त भी आ गए, शिवानंद सेन आदि सभी बंधुगण उनके साथ थे। वासुदेव दत्त श्री गौरचंद्र के बड़े प्रिय थे, प्रभु की कृपा से सब तत्व जानते थे। वासुदेव दत्त जगत का हित करने वाले थे, चैतन्य रस में मत सब प्राणियों पर दया करते थे। वे गुणग्राही और अदोषदर्शी थे, ईश्वर और वैष्णवों में प्रेम बुद्धि रखते थे। श्री गौर सुंदर श्री वासुदेव को देखकर गोद में लेकर बहुत रोने लगे। तब वासुदेव दत्त ने प्रभु के चरण को पकड़ लिया और ऊंचे स्वर से क्रंदन करने लगे। श्री वासुदेव दत्त के रोते समय ऐसा कौन मनुष्य है जो शुष्क लकड़ी पत्थर की तरह रहा और रोया ना हो। वासुदेव दत्त के गुणों की जो पराकाष्ठा है उनके सिवाय और कोई उपमा नहीं। प्रभु कहते थे कि मैं निश्चय ही वासुदेव दत्त का हूं। वासुदेव दत्त के विषय में प्रभु की ऐसी प्रीति थी, श्री गौरचंद्र स्वयं बार बार कहते थे कि मेरा यह शरीर वासुदेव दत्त का ही है, दत्त मुझे जहां बेचेंगे वहीं मैं बिक जाऊंगा। भगवान ऐसा कहते हैं, मैं सत्य कहता हूं इसमें अन्यथा कुछ नहीं है। वासुदेव दत्त की हवा जिसके शरीर में लगेगी श्री कृष्णचंद्र उसकी सदा ही रक्षा करेंगे। देखो कितना, हे वैष्णवो सुनो, मैं सत्य कहता हूँ मेरा यह शरीर केवल श्री वासुदेव दत्त का है। वासुदेव दत्त के ऊपर प्रभु की कृपा को सुनकर वैष्णवगण आनंद से जय जय ध्वनि करने लगे। भक्त को बढ़ावा देना श्री गौर सुंदर ही जानते हैं, जैसे भक्त करते हैं वैसे आप करते हैं। इस प्रकार श्री गौर सुंदर प्रभु ने कुछ दिन तक श्रीवास के घर में आनंद से निवास किया। श्रीवास और श्री राम दोनों ही भाई गुणगान करते थे और श्री वैकुंठनाथ विवल होकर नृत्य करते थे। श्रीवास और रामाई पंडित श्री चैतन्य देव को दोनों ही अत्यंत प्रिय थे। दोनों श्री चैतन्य की देह थे। कौन दोनों? श्रीवास पंडित और श्री रामाई पंडित बोलते हैं या श्री राम पंडित बोलते हैं। दोनों श्री चैतन्य के देह थे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। संकीर्तन, भागवत पाठ, विदूषक लीला आदि अनेक प्रकार से श्रीवास प्रभु को संतुष्ट करते थे। उन्हीं के घर में तो प्रभु का सबसे पहले प्रकाश हुआ था। हे मद रंगे प्रभु श्री गौर सुंदरे कथो दिन रहिले श्रीवासे रे घरे। श्रीवास रामाई दुई भाई गुण गाए बेवले हई अनच श्री वैकुंठ राय। चैतन्य रे अति प्रिय श्रीवास रामाई दुई चैतन्य रे देह द्विधा किछु नाही। एक दिन प्रभु ने एकांत में बैठकर श्रीवास से कुछ व्यवहार की बात कही। सुन रहे सब लोग? एक दिन एकांत में बैठ करके प्रभु ने श्रीवास से कुछ व्यवहार की बात कही। व्यवहार की बात, कभी व्यवहार की बात नहीं करते थे। कृष्ण कथा के अलावा और कोई बात नहीं होती थी, लेकिन एक दिन व्यवहार की बात कही। किसने? महाप्रभु ने। किससे कही? श्रीवास से कही। प्रभु ने कहा, मैं देखता हूं तुम कहीं भी तो नहीं जाते हो, फिर कैसे निर्वाह करते हो और कैसे निर्वाह करोगे? तुम कहीं जाते नहीं। श्रीवास बोले, हे प्रभु आपसे सत्य कहता हूं, मेरा चित्त कहीं जाने को नहीं करता। प्रभु ने कहा, तुम्हारा परिवार भी तो बहुत बड़ा है, तब सबका निर्वाह कैसे होगा? अपने परिवार में सबसे बड़े तुम ही हो, सब तुम्हारे आश्रित हैं, चार भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं और दास दासी, बहुत बड़ा परिवार है ना। श्रीवास ने कहा, जिसके भाग्य में जो होगा वही होगा और जिस प्रकार से भी वो उसे अवश्य मिलेगा। प्रभु ने कहा, ऐसा है तो तुम संन्यास ग्रहण कर लो। अगर ऐसा है तो तुम संन्यास ग्रहण कर लो। तब श्रीवास ने कहा, मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा। मतलब भक्त को जो है इतनी छूट होती है कि वो जो है जिस आश्रम में और जिस वर्ण में रहना चाहे उसी वर्ण और आश्रम में रहे, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, है ना। और जिम्मेदारी भी नहीं उठाएगा, उस आश्रम वर्ण की जिम्मेदारी भी नहीं उठाएगा तो भी उसके लिए कोई बंधन नहीं है ना। अब गृहस्थ आश्रम में है तो कुछ जिम्मेदारी भी है, तो जिम्मेदारी भी नहीं उठाएंगे, संन्यास भी नहीं लेंगे। भगवान के संन्यास ले लो, नहीं संन्यास नहीं लूंगा, है ना। देखो प्रभु बोले, संन्यास भी ग्रहण नहीं करोगे और भिक्षा करने को भी किसी के द्वार पर नहीं जाओगे तो किस प्रकार से परिवार का पोषण करोगे? तुम्हारे वचनों से तो मैं कुछ भी नहीं समझा। आजकल के समय में तो कहीं ना जाने से तो कुछ मिलता नहीं, कहीं से आकर दरवाजे पर नहीं मिलता। यदि तुम्हारे द्वार पर आकर ना मिले तो बताओ तुम क्या करोगे? अब तुम कहीं जाते नहीं और दरवाजे में आकर अगर ना मिले तो तुम क्या करोगे? एक दिन प्रभु श्रीनिवास रसहिते व्यवहार कथा के चुका न निभृते। प्रभु बोले, तुम देखे कोथाओ ना जाओ के मते बकुलाई वा के मते कुलाओ। श्रीवास बोले, ने प्रभु कोथाओ जाहिते नाई लय मोर चित्त बलिनो तो मते। प्रभु बोले, परिवार अन्य के तुमार निर्वाह के मते तब है बे सभा। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने प्रश्न पूछा कि दरवाजे में अगर ना आए तो तुम क्या करोगे? हाथ से तीन ताली बजाकर श्रीवास ने कहा, एक दो तीन स्पष्ट कह देता हूं। क्या? एक दो तीन स्पष्ट कह देता हूं। अब स्पष्ट तो क्या कुछ भी नहीं कहा। श्रीवास पंडित कहते हैं, एक दो तीन स्पष्ट कह देता हूं। प्रभु बोले, एक दो तीन जो तुमने कहा उसका क्या अर्थ है और ताली क्यों बजाई? स्पष्ट तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रीवास ने कहा, मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि देखिए, तीन दिन उपवास होने पर भी यदि भोजन नहीं मिलेगा तो सत्य कहता हूं गले में घड़ा बांधकर गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। बस और क्या, गले में घड़ा बांधूंगा और गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। श्रीवास कितनी बार सुनते ही श्री सचिनंदन हुंकार कर उठे। प्रभु बोले, श्रीवास पंडित क्या कहा? अहो, तुम्हें अन्न के दुख से क्या उपवास होगा? यदि कदाचित लक्ष्मी भी भिक्षा करे, लक्ष्मी को भी भिक्षा मांगना पड़े, लक्ष्मी कहीं भिक्षा मांगेगी? सौभाग्य की देवी, धन की देवी, लेकिन शायद लक्ष्मी को भिक्षा मांगनी पड़े तो भी तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं होगी। स्वयं मैंने ही गीता शास्त्र में जो कहा है उसे क्या श्रीवास तुम इस समय भूल गए हो? भगवान कह रहे हैं। श्रीवास ने बोले, ने हाथ तीन ताली दिया, एक दो तीन एक कहीं लो भांगिया। प्रभु बोले, एक दो तीन जे करीला की अर्थ हार का के ने ताली दिला। श्रीवास ने बोले, ने यही दृढ़ हमारे तीन हो पसियो यदि न मिले आहार। तबे सत्य कहो घट बांधिया गलाए प्रवेश करे मुमोहि सर्वथा गंगाए। हे मात्र श्रीवास रे सुनिया बचन उठिला हुंकार करे श्री सचिनंदन। प्रभु बोले कि बल्ले वे पंडित श्रीवास तोर की अन्य दुख है वे उपास। यदि कदाचित वा लक्ष्मी ओ भिक्षा करे तथापि दारिद्र न है वे तोर घरे। आपने जे गीता शास्त्र बलिया चमोई तो कि श्रीवास ए वे पसारी लतुई। तो भगवान ने कहा है गीता में, जो मेरा अखंड चिंतन और सर्वभाव से मेरी उपासना करते हैं, मुझमें नित्य अखंड युक्त हुए हैं, उनका योग यानी प्राप्ति और क्षेम यानी रक्षा मैं ही वहन करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनको अपने सिर पर रखकर मैं भोजन पहुंचाता हूँ। हरिओ, जो मेरा चिंतन करता है, जो दूसरे किसी के द्वार पर भी नहीं जाता, उसे सभी सिद्धियां स्वयं आकर मिलती हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ अपने आप उसके पास आ जाते हैं, तथापि मेरा दास ना तो उन्हें चाहता है ना ग्रहण ही करता है। मेरा सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करता है। अरे वो, और महाप्रलय में भी उस भक्त का नाश नहीं होता जो मेरे दास का भी स्मरण करता है, उसका भी मैं पालन पोषण करता हूँ। दास की तो बात दूर है, दास का भी स्मरण करे उसका भी मैं पालन पोषण करता हूँ। जो मेरे सेवकों का दास है वो मुझे बड़ा प्रिय है, ये दृढ़ सत्य है कि वो मुझे अनायास ही पा जाता है। मेरे सेवक को भोजन की क्या चिंता, सर्वश्रेष्ठ मैं जिसका पोषण करने वाला हूँ। हे श्रीवास, तुम सुखपूर्वक घर में बैठो, तुम सुखपूर्वक घर में बैठो, सब कुछ तुम्हारे द्वार पर अपने आप ही आ जाएगा। अरे वो अद्वैत आचार्य, और तुम्हारे लिए मेरा ये वरदान है। अब सुन लो क्या वरदान, अद्वैत आचार्य और तुम्हारे लिए मेरा ये वरदान है कि तुम दोनों के शरीर में बुढ़ापा का प्रभाव नहीं पाएगा, बुढ़ापे का प्रभाव, बुढ़ापे का कष्ट नहीं आएगा। बुढ़ापा आएगा लेकिन बुढ़ापे का कष्ट नहीं आएगा। तुम दोनों, कौन दोनों? ये जाने चिंते मोरे आनन हाइया तार मध्य दें मोई माथा बहिया। जय मोरे चिंते नाही जाए करो द्वारे आपने आसिया सर्व सिद्धि मिले तारे। धर्म अर्थ काम मोक्ष आई से तथापि ना चाहे न लय मोरे दासी। मोरे सुदर्शन चक्रे राखे मोरे दास मां प्रलय जोजार नाहे के बिनासे। जे मोहर दासे रोय करे स्मरण तारे उकारो मोई पोषण पालन। सेवक के दास से मोहरे प्रिय बढ़ अनायास सही से मोहरे पाए दृढ़। कौन चिंता मोर सेवा के रे भक्ष करी मुई जान पुष्टा आछो सकल ऊपरी। सुख श्रीनिवास तुम्हें बस था के घरे अपने आशीव सब तुम्हारे दुआरे। अद्वैत रे तुम्हारे अमारे बरे जरा ग्रस्त नाहे दोहारे कले बरे। श्री गौर सुंदर ने राम पंडित को बुलाकर कहा, हे राम मेरी बात सुनो, तुम अपने बड़े भाई श्रीवास की सेवा मेरी आज्ञा से सर्वथा ईश्वर बुद्धि से करना। हे राम पंडित, तुम मेरे प्राणों के समान हो, श्रीवास की सेवा करना कभी मत छोड़ना। श्री प्रभु के वाक्य सुनकर श्रीवास और श्री राम के आनंद का अंत नहीं रहा, वे पूर्ण काम हो गए। आज तक भी श्रीवास के द्वार पर श्री चैतन्य कृपा से सबको स्वतः उपस्थित होता है। श्री वास के उदार चरित्र के विषय में मैं क्या कहूँ, जिनके स्मरण करने से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। देखो आज उनका आविर्भाव दिवस है, आज स्मरण करना चाहिए उनका। श्री वास ने श्री चैतन्य देव की सच्ची सेवा की है, उनके घर में श्री चैतन्य प्रभु का सब आनंद है। इस प्रकार श्री वास की इच्छा से कुछ दिन श्री गौर सुंदर उनके घर में रहे। श्री वास पंडित सब गोष्ठी सहित गौरचंद्र को देख देख कर आनंद सागर में गोता लगाते थे। सुनिया प्रभु रे वाक्य श्रीवास श्री राम, अंत नाही आनंद हैला पूर्ण काम। अद्यापि श्रीवास रे चैतन्य कृपाए, द्वारे सब उपसन्न है ते चली लाए। की कहे वे श्रीवास रे उदार चरित्र, त्रिभुवन है जार स्मरण पवित्र। सत्य से मिले ने चैतन्य रे श्रीनिवास, जार घरे चैतन्य रे सकल विलास। हे निरंग श्रीवास मंदिर गौर राय, रही लेने कथो दिन श्रीवास इच्छाए। अब एक लीला बड़ी सुंदर है, लेकिन समय तो बीत चुका है तो मैं संक्षेप में सुना देता हूँ। तो इसमें यह है कि भगवान संन्यास ले चुके हैं और जगन्नाथपुरी में रहते हैं। जगन्नाथपुरी में श्रीवास पंडित और अद्वैताचार्य और सब जितने नवदीप के भक्त हैं, 4 महीने जगन्नाथपुरी में रहते हैं और भगवान का संग प्राप्त करते हैं। तो एक बार अद्वैताचार्य ने सब भक्तों से कहा कि आज हम चैतन्य अवतार का कीर्तन करेंगे, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। सब भक्त डरते थे कि चैतन्य महाप्रभु भक्ति के भाव में तो कृष्ण के कीर्तन के अलावा अपना कीर्तन नहीं करने देते थे। लेकिन अद्वैताचार्य ने सबको आप जो है निर्भय कर दिया कि कोई डरने की जरूरत नहीं, आज हम चैतन्य अवतार का कीर्तन करेंगे। क्योंकि जिनके कारण हम लोगों को इतना बल मिला है, हमारे कीर्तन को बल मिला है, तो अब उनका हम कीर्तन क्यों ना करें। तो आज हम केवल चैतन्य अवतार का ही कीर्तन करेंगे। अद्वैताचार्य की आज्ञा हुई तो भक्तों का डर दूर हो गया और चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन, उनके नामों का कीर्तन कर रहे हैं। और भगवान रोज कीर्तन में जैसे आते थे वैसे आए, लेकिन अपने ही नाम का कीर्तन सुन करके लज्जित हो गए और जो है चले गए, अपने निवास स्थान में वापस चले गए। तो भक्तों ने खूब कीर्तन किया, खूब आनंद लिया, बहुत आनंद आया। और बाद में जो है अब चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए आए, तो भगवान जो है डर दिखाने के लिए भगवान जो है लेटे रहे। गोविंद द्वारपाल ने कहा कि सब भक्त लोग आपके दर्शन के लिए आए हैं, तो भगवान लेटे रहे, सोते रहे और कहा कि भेज दो उनको अंदर, अंदर बुलाओ। अब सब भक्त लोग जो है आए और भगवान बात नहीं कर रहे हैं और लेटे हुए हैं। अब भक्त अंदर से बहुत डर गए कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो इस तरह से उन्होंने जो है कृष्ण से प्रार्थना की, कृष्ण से प्रार्थना की रक्षा करने के लिए। तो भगवान चैतन्य जो है उस समय कहते हैं कि आज आप लोगों ने कृष्ण का कीर्तन छोड़ करके किस अवतार का कीर्तन किया है, मैं समझना चाहता हूँ। बड़े प्रेम से बोले, आप लोगों ने आज कृष्ण का कीर्तन छोड़ करके किस अवतार का कीर्तन किया है, मैं जानना चाहता हूँ। अब कोई उत्तर देने की किसी की हिम्मत नहीं, तो श्रीवास पंडित ही एक हैं जिनके पास साहस है उत्तर देने का। बोले कि प्रभु हम जीवों की तो कोई शक्ति है नहीं, भगवान ने आज जिस अवतार का कीर्तन कराया उसका हमने कीर्तन किया। तो अब सीधी सीधी बात तो मतलब ना भगवान बोले ना ये बोल रहे हैं, घुमा घुमा के बात बोल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जो छिपना चाहता है, जो छिप कर जो गुप्त रहना चाहता है उसको क्यों प्रकट करते हो। भगवान कहते हैं जो गुप्त रहना चाहता है उसको क्यों प्रकट करते हो। तो श्रीवास ने जो है अब उत्तर कैसे दिया, कुछ बोले नहीं, सूर्य के सामने हाथ ऐसे किया। तो भगवान कहते हैं कि ये हाथ फैला करके क्या कहना चाहते हो। तो श्रीवास बोले कि मैं सूर्य को ढकने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समझे उत्तर, समझिए कितना बढ़िया उत्तर है, सूर्य को ढकने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं तो अपनी बात को खोल के बताओ क्या क्या कहना चाहते हो। तो श्रीवास बोले कि प्रभु सूर्य को तो शायद ढका जा सके, शायद सूर्य को ढका जा सके, लेकिन आपको छिपाना संभव नहीं है। आप तो क्षीर सागर, इतना बड़ा क्षीर सागर है, उसमें छिप नहीं सके, है ना। यहाँ पृथ्वी तो बहुत छोटी है, यहाँ कैसे छिपोगे आप, है ना। तो और फिर कहा कि आप ही अपनी कृपा से जब आप प्रकट होते हैं तभी जीव जान पाते हैं, नहीं तो किसी की शक्ति नहीं आपको जानने की। तो ये आपकी ही कृपा है जिससे कि जीव आपको जान पाते हैं। उसी समय त्रिपुरा और बांग्लादेश और उड़ीसा और कहाँ कहाँ से भक्त लोग बहुत जो है चैतन्य अवतार का कीर्तन करने लगे, जोर जोर से कीर्तन करने लगे। तो श्रीवास पंडित कहते हैं कि देखो प्रभु, पूरी दुनिया में आपका गुणगान हो रहा है, क्या मैंने उनको सिखाया? आप कहाँ कहाँ तक दंड दोगे, कहाँ कहाँ तक आप रोकोगे कीर्तन को? तो भगवान बोले, भगवान तो अपने भक्तों को जो है हमेशा विजय दिलाते हैं ना। तो भगवान कहते हैं कि पंडित, तुम्हारी शक्ति है कि जो है तुम्हारी शक्ति से ही ये सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, मैं तुमसे हार गया। भगवान बोले, मैं तुमसे हार गया। तो इस तरह से भगवान की जो है बड़ी ये जो है प्रिय लीला है, बड़ा प्रिय उनका जो है चरित्र है, कितना कोमल भगवान का जो है स्वभाव है, तो इससे पता चलता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री राधिका रमण भगवान की, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, श्री कृष्ण बलराम भगवान की, श्री गौर निताई की, जय हरि बोल।